4 सितंबर दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फजल। चरमपंथी संगठन अफगान तालिबान के नेता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत की पुष्टि।
He was always quite a character. I mean, he was the blue-eyed boy of President Reagan and the CIA in the early stages of the Afghan Mujahideen fight against the Soviet.
कोलकाता में एक पुल के गिरने की खबर, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। किसानों की खुदकुशी की श्रृंखला में आज सुनवाएंगे विदर्भ के किसानों का हाल।
ये कर्जा फेरते फेरते शादी रुक गई तो उसने ऐसा तो महसूस नहीं होने दिया, मेरे को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं ऐसी करने वाली हूँ, वो हिम्मत वाली थी, उसने पाया जान नहीं लिया।
लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। अफगान तालिबान ने चरमपंथी गुट हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी की लंबी बीमारी के बाद मौत होने की घोषणा की है। हक्कानी का चरमपंथी गुट अफगानिस्तान में भारत के ठिकानों, अन्य देशों के दूतावासों, अफगान संसद की इमारत और बाजारों पर हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। साल 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए 58 लोगों की जान लेने वाले हमले के लिए भारत ने इसी गुट को जिम्मेदार बताया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक पुल के ढहने से इसके नीचे गाड़ियों में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। शहर के पश्चिमी हिस्से में माझीरहाट पुल जिस समय गिरा उस समय कई गाड़ियां इससे गुजर रही थीं। पुलिस और सेना की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। अभी तक घायलों और मृतकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हैदराबाद पुलिस का कहना है कि वो हीरों से जड़े गए सोने के एक लंच बॉक्स की तलाश कर रही है जो आखिरी निजाम का था। इस लंच बॉक्स के साथ ही रत्न जड़ित चम्मच भी गुम है। दोनों की कीमत 70 लाख डॉलर यानी लगभग 50 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस का कहना है कि म्यूजियम बनाए गए निजाम के महल से 10 से ज्यादा कैमरों से बचते हुए रोशनदान के जरिए दाखिल होकर इस चोरी को अंजाम दिया गया। जर्मनी में लेफ्ट विंग ने उन लोगों को आकर्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है जो जर्मनी में बड़ी संख्या में आ रहे प्रवासियों को लेकर चिंतित हैं। दरअसल इस मुद्दे को अति दक्षिणपंथियों ने चुनाव प्रचार में खूब भुनाया था। लेफ्ट ने इस अभियान का नाम ऑफशेटन रखा है, जिसका मतलब है उठो या जागो। इस अभियान को वामपंथी नेता शागा वोगनकनेक्ट ने शुरू किया है। जर्मनी के पूर्वी हिस्से में लगातार लेफ्ट की पकड़ कमजोर हो रही है और दक्षिणपंथी AfD पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। बर्लिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में Wagen Connect ne kaha
In einem Land, wo trotz jahrelangem Wirtschaftsaufschwung knapp die Hälfte der Bevölkerung, also 40
जिस देश में लगभग आधी आबादी ने 40% लोगों ने मंदी से उबरने के बावजूद 20 सालों में ढंग की वेतन वृद्धि नहीं देखी, वहां लोकतंत्र बेअसर साबित हो रहा है। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं और देख रहे हैं कि हमें शक्तिहीन समझ लिया जाए तो कैसे नफरत फैल जाती है। अगर हम इसका मुकाबला नहीं करते हैं तो 5 या 10 साल में ये देश पहचानने लायक नहीं रहेगा। ये थे जर्मनी में लेफ्ट गठबंधन के नेता शागा वोगनकनेक्ट के शब्द। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब में ताजा हवाई हमलों की खबर है। दूसरे पक्ष के सूत्रों का कहना है कि ताजा हमले में रूस के लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए गए थे, मगर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि उसकी सहयोगी सीरियाई सरकार इस समस्या को जड़ से मिटाने की तैयारी में है। इदलिब सीरिया का इकलौता ऐसा इलाका है जहां पर विद्रोही मजबूत स्थिति में है। यहां सहायता अभियान में जुटी नॉर्वे की रिफ्यूजी काउंसिल की रेचल साइडर ने कहा कि इदलिब के लोगों को बाहर निकाले जाने की संभावनाएं बेहद कम हैं।
They're facing a closed border with Turkey on one side and active conflict lines on all other sides.
तुर्की के साथ लगती सीमा बंद है और बाकी सभी जगहों पर संघर्ष चल रहा है। मदद अभियान चला रहे पूरे समुदाय ने 7 लाख आम नागरिकों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है जो कि इस हिंसा के बीच में फंस सकते हैं। ये थे नॉर्वे की रिफ्यूजी काउंसिल के रेचल साइडर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। म्यांमार में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जेल में डाले गए समाचार एजेंसी रॉयटर्स के 2 पत्रकारों की पत्नियों ने कहा है कि उनके पतियों को फंसाया गया है और उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। वालोन और क्यों सो ऊ को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया था, वे बर्मा की सेना द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों की कथित हत्या की जांच कर रहे थे। म्यांमार में बहुत सारे निजी समाचार संस्थानों ने इन पत्रकारों को 7 साल की सजा सुनाए जाने की आलोचना की है और कहा है कि ये सूचना की आजादी पर हमला है। लीबियाई प्रशासन का कहना है कि त्रिपोली में एक दूसरे के विरोधी मिलिशिया धड़ों के बीच संघर्ष छिड़ जाने से करीब 2000 परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और 50 लोगों की मौत हो गई है। इटली के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस हालात के लिए कुछ हद तक फ्रांस भी जिम्मेदार है क्योंकि उसने 2011 में गद्दाफी के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। चरमपंथी संगठन अफगान तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क के मुखिया जलालुद्दीन हक्कानी की मौत की पुष्टि की है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद 79 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हुई है। हालांकि इससे पहले भी हक्कानी की मौत की अफवाहें कई बार उड़ी, पर पहली बार तालिबान ने इस खबर की पुष्टि की है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी खबरों का सार सुनिए बीबीसी संवाददाता अनंत प्रकाश से।
हक्कानी को अफगानिस्तान के प्रमुख चरमपंथी नेताओं में गिना जाता था। तालिबान ने एक बयान जारी करके कहा है कि अल्लाह के मजहब के लिए उन्होंने अपनी जवानी में काफी कष्ट सहे और उन्हें अपने अंतिम वर्षों में लंबी बीमारी से जूझना पड़ा। कई मौकों पर हक्कानी से मुलाकात करने वाले पत्रकार अहमद राशिद बताते हैं कि बागी नेता होने के साथ साथ उन्होंने नशीले पदार्थों को बेचकर भी पैसा कमाया।
He was always quite a character. I mean, he was the blue-eyed boy of President Reagan and the CIA.
अफगानिस्तान पर सोवियत हमले के दौरान वो अमरीकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और CIA के बेहद करीबी शख्स माने जाते थे। इस दौरान अपने लोगों के बीच वो एक नेता के रूप में उभरे, जबकि वो कबायली समुदाय से नहीं आते थे। उन्होंने ड्रग्स के कारोबार से बहुत पैसा कमाया और उसी पैसे से अपने अभियान चलाए। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के भी करीबी माने जाते थे।
ये थे पत्रकार अहमद राशिद के शब्द। 90 के दशक में जलालुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने तालिबान को छोड़कर ओसामा बिन लादेन के संगठन अलकायदा से हाथ मिला लिया। पत्रकार अहमद राशिद उनके इस फैसले को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानते हैं।
I think that was the biggest mistake of his life, and I met him during that critical moment. He was a minister in the Taliban cabinet.
मुझे लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती रही। मैं उनकी जिंदगी के इस अहम मोड़ पर उनसे मिला। 90 के दशक में जब वो तालिबान सरकार में मंत्री हुआ करते थे, तब वो अपने ऑफिस में बैठकर तालिबान का मजाक उड़ाया करते थे। वो उनसे नफरत करते थे, लेकिन इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को अंजाम दिया गया और सबसे पहले उन्हें CIA ने छोड़ दिया। इसके बाद ओसामा बिन लादेन ने उन्हें छोड़ दिया। ये बहुत दुर्भाग्यशाली था कि वो अलकायदा में शामिल हुए।
ये थे पत्रकार अहमद राशिद के शब्द। काबुल में कार्यरत बीबीसी संवाददाता महफूज जुबैदे के मुताबिक, कुछ साल पहले अपने संगठन की बागडोर अपने बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी को सौंपने के बाद जलालुद्दीन हक्कानी काबुल के उन लोगों में शुमार नहीं थे जो कि बड़े फैसले लिया करते थे, लेकिन कई लोग मानते हैं कि अपनी मौत से पहले तक वह एक सलाहकार की भूमिका में रहे और उनकी मौत इस संगठन के लिए भारी भावनात्मक क्षति होगी। हक्कानी नेटवर्क इस समय अफगानिस्तान में सबसे दुर्दांत चरमपंथी समूह में गिना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि अफगानिस्तान में इस संगठन का प्रभाव इस्लामिक स्टेट से भी ज्यादा है। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान अफगान सीमा में सक्रिय रहने वाले उन तमाम चरमपंथी गुटों में शामिल था जो साल 2001 में तालिबान को सत्ता से बाहर करने वाले अमरीकी नेतृत्व वाले सैन्य अभियान के बाद सामने आए थे। इस संगठन को साल 2008 में काबुल में इंडियन एम्बेसी पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें 58 लोगों की मौत हुई थी। भारत के अलावा कई देशों के दूतावास, अफगान संसद की इमारत, स्थानीय बाजारों और कई अमरीकी सैन्य अड्डों पर हमले के लिए भी हक्कानी नेटवर्क को ही जिम्मेदार माना जाता है।
अफगान तालिबान के नेता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
हैदराबाद में 2007 में हुए दोहरे बम धमाके मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों अनीक शफीक सईद और इस्माइल चौधरी को दोषी करार दिया है, जबकि दो को बरी कर दिया गया है। आरोपित दोषियों की सजा पर फैसला सोमवार को आएगा। हैदराबाद में हुए इन धमाकों में 44 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 68 लोग घायल हो गए थे। थोड़ी देर पहले मैंने हैदराबाद फोन कर उमर फारूक से बात कर इस फैसले का विवरण मांगा।
5 अभियुक्त थे, इनमें से 2 को अदालत ने दोषी माना है और इनको कितनी सजा दी जाएगी इसका घोषणा जो है वो अगले सोमवार को होगी। बाकी 3 में से 2 और अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है क्योंकि उनके विरुद्ध काफी सबूत नहीं थे, और 5वें अभियुक्त का फैसला भी सोमवार को किया जाएगा। याद होगा कि आज से 11 साल पहले मई 25 2007 को 2 भयंकर बम विस्फोट हुए थे हैदराबाद में, 2 बहुत ही भीड़ वाले इलाकों में। एक था लुम्बिनी पार्क और दूसरा गोकुल चाट भंडार, बहुत ही लोकप्रिय होटल। इन दोनों जगहों पे काफी भीड़ रहती थी और वहां पे शाम के वक्त इतवार के दिन बम विस्फोट हुए जिसमें 44 लोगों की मृत्यु हुई थी और 68 लोग घायल हुए थे। और इसकी जो छानबीन थी, दो साल तक छानबीन में कोई पकड़ा नहीं गया था, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ के दौरान इसके पीछे जो षड्यंत्र था वो सामने आया और उसके बाद हैदराबाद की पुलिस ने इनमें से पांच लोगों को हिरासत में लेके इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी अदालत में और कहा था कि इनका संबंध इंडियन मुजाहिदीन से है और इन्होंने एक और बम विस्फोट का बदला लेने के लिए ये कार्रवाई की थी। उससे कुछ तीन महीने पहले मक्का मस्जिद में बम विस्फोट हुआ था जिसमें छह लोग मारे गए थे और यहाँ की पुलिस का कहना था कि उसके बदले में ये कार्रवाई की गई।
सिर्फ दो ही लोगों को दोषी पाया गया, बाकी तीन लोग बरी हो गए, ये रिफ्लेक्शन है एक तरह से पुलिस की जांच पर।
हाँ, खुद जो इनके वकील थे जो अभियुक्तों की तरफ से खड़े थे उनका कहना था कि जिन दो व्यक्तियों को दोषी माना गया खुद उनके खिलाफ भी सबूत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। प्रोसिक्यूशन का यह कहना था कि नहीं, इन लोगों ने साजिश की थी और बदला लेने के लिए कार्रवाई की थी। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों को गवाह के तौर पे पेश किया गया उनका नाम केस में तकरीबन दो साल के बाद आया है। मतलब पहले जिस वक्त ये धमाके हुए थे, जब ये छानबीन हुई थी, उस समय किसी को गवाह के तौर पर वहां पर नॉमिनेट नहीं किया गया था, लेकिन दो साल के बाद कहा गया कि ये लोग गवाह है। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी थी प्रोसिक्यूशन के केस में जिसके चलते ये दो लोगों को बरी किया गया है।
किसी तरह के संकेत मिले हैं कि प्रोसिक्यूशन अपील करेगा इन लोगों को बरी करने के खिलाफ?
हाँ, उनका ये कहना है कि वो सोमवार का फैसला आने के बाद और पूरा फैसले की कॉपी मिलने के बाद ही इस बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, मृत्युदंड हो सकती है, वो इन दो दोषियों को दी जाएगी। उनमें से एक का नाम अनीक शफीक सैयद है और दूसरे का नाम अकबर इस्माइल चौधरी है।
अच्छा, ये बताइए, जो शिकार हुए थे इस बम धमाकों के, उनके सगे संबंधियों की कोई टिप्पणी आई है इस फैसले पर?
हाँ, काफी लोग जमा थे जब आज बड़े कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच में ये फैसला सुनाया गया और इन्होंने काफी निराशा भी व्यक्त की है। उनका कहना है कि 11 साल हुए हैं धमाके को और लगभग 2013 में जो अभियोग पत्र दाखिल हुआ था अदालत में, उसके बाद से 5 साल से ये कार्रवाई चल रही है और इतनी लंबी कार्रवाई के बाद और छानबीन के बाद भी अगर ये कोई सबूत नहीं दे सके और सारे पांचों अभियुक्तों को अगर सजा नहीं मिल सकी है अदालत में, तो ये प्रोसिक्यूशन की नाकामी है और वो निराशा जता रहे थे कि हमें इंसाफ नहीं मिला है अभी। और कई लोगों को ये भी शिकायत थी सरकार से कि 11 साल पहले जब विस्फोट हुए तो जब बड़े बड़े घोषणाएं उन्होंने की थी सहायता करने की, उनमें से अक्सर वादों को पूरा नहीं किया गया। कुछ लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया था, वो नहीं मिल सके और जाहिर सी बात है कि इस फैसले के अवसर पे उस काले दिन की यादें लोगों के दिलों में ताजा हुई तो काफी लोग भावुक थे उन यादों को लेके।
ये थे हैदराबाद से उमर फारूक। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों से कहा है कि वो दलित शब्द का इस्तेमाल न करें। मंत्रालय का कहना है कि अनुसूचित जाति एक संवैधानिक शब्दावली है और इसी का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर और बाहर इस फैसले की आलोचना हुई है। सुनिए विनीत खरे की रिपोर्ट।
मंत्रालय के इस फैसले का देश भर के कई दलित संगठन और बुद्धिजीवी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि दलित शब्द का राजनीतिक महत्व है और ये पहचान का बोध कराता है। इसी साल मार्च महीने में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था। मंत्रालय ने सभी राज्यों के सरकारों को निर्देश दिया था कि आधिकारिक संवाद या पत्राचार में दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाए। मंत्रालय का कहना है कि दलित शब्द का जिक्र संविधान में नहीं है। सरकार के इस फैसले से भाजपा सांसद उदित राज खुश नहीं है।
नहीं, दलित शब्द इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि प्रयोग में आ चुका है, सारे डॉक्यूमेंट्स में आ चुका है, किताबों में है, लिखने पढ़ने में है। दलित वो करता है, द्योतक है, ये दबे हैं, कुचले हैं, अब संघर्ष का अब एक प्रतीक बन गया है। दलित नहीं, अगर इनको दलितों को ब्राह्मण कह दिया जाए तो वह भी शब्द अपमानित शब्द मान लिया जाएगा। शब्द से कोई, जब चमार चूहड़े कहा जाता था तितराज था, अब चूहड़ा से वाल्मीकि हो गए तो क्या सम्मान बढ़ गया? कुछ नहीं बढ़ा।
सरकार के इस निर्देश पर केंद्र की एनडीए में ही मतभेद है। एनडीए की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि दलित शब्द गर्व से जुड़ा है। उधर जनता दल यूनाइटेड के श्याम रजाक ने कहा,
नाम बदल देने से तो कुछ नहीं होता है। पहले कहा गया हरिजन, फिर कहा गया दलित, अब कहा जा रहा है अनुसूचित जाति जनजाति। नाम बदलने से ज्यादा जरूरी है उसके लिए लोगों के दिलों में प्यार जगाना। जिन लोगों के द्वारा शोषण होते रहा उन लोगों के द्वारा शोषण भी समाज स्थापित करना, इसके लिए निर्देश देना चाहिए था कि उन लोगों की स्थिति को सुधार करने के लिए समय सीमा के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उस योजना का कार्यान्वयन हो और जो उन पर अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ एक बड़ी सशक्त ढंग से कार्रवाई हो।
वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि यह आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर दिया गया है। इस बारे में याचिकाकर्ता पंकज मेश्राम का कहना था,
भारत देश में एक विशिष्ट जाति समूह के लोगों के लिए इस असंवैधानिक और अपमानास्पद शब्द का इस्तेमाल हो रहा था। खास तौर पे मीडिया द्वारा इस शब्द का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था और हम ये चाहते थे कि ये शब्द से उस जाति समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेच पहुंचती थी और इसी वजह से हमने भीम शक्ति सामाजिक संगठन के माध्यम से नागपुर उच्च न्यायालय में एडवोकेट शैलेश जी नारनवरे साहब इनके माध्यम से 2016 में एक याचिका दायर की थी और उसी याचिका के तहत जून 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय नागपुर ने अपना जो निर्णय दिया था उसमें मीडिया द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल ना करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे।
उधर मंत्रालय के इस आदेश को लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं। दलित चिंतक कांचा इलैया ने बीबीसी से कहा कि वो इसे चुनौती देंगे। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के माजेर हाट में एक पुल गिर गया है। जानकारी के मुताबिक पुल के मलबे के नीचे बहुत सारे लोग और गाड़ियां दबी हुई हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। पास में सेना का कैंप भी है, उनसे मदद मांगी गई है। आइए सीधे चलते हैं कोलकाता, बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टासाली के पास। अमिताभ, बताइए कैसे हुई ये दुर्घटना?
देखिए, ये जो यहाँ के आई विटनेसेस है वो हमको बता रहे थे, जिसमें एक है प्रदीप कुमार सील, जो जिस जगह पुल गिर पड़ी है वहां से मुश्किल से 10-12 मीटर की दूरी पे एक पंपिंग स्टेशन है, उसमें काम करते हैं। प्रदीप सील बता रहे थे कि शाम को पौने पांच बजे अचानक से एक भयंकर आवाज सुनाई दी उनको, और मतलब कि वो ऐसी आवाज थी कि वो शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो और नीचे एक जिस जगह पुल गिरी है वो उसके नीचे से एक ड्रेनेज कैनल निकल चुकी है और बगल में एक तरफ मेट्रो रेल की प्रोजेक्ट काम कर चल रही है और दूसरी तरफ है एक रेलवे लाइन, और इस ड्रेनेज कैनल की जो पानी है वो करीब 20 मीटर ऊंची तक उछल उठी, ऐसे ही बता रहे थे। और चारों तरफ जो शोर मच गया, लोगों की रोना धोने का आवाज उनको सुनाई दी।
कुछ 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 इस तरह के संकेत हैं, हताहतों की संख्या के बारे में कुछ पता चल पाया है अभी तक?
नहीं, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो मुझे दिख रहा है सामने के ब्रिज के ऊपर से, उस वक्त जितनी भी गाड़ियां जा रही थी, एक मिनी बस है और 3 सफेद रंग की गाड़ी दिख रहा है, ये तो ब्रिज के ऊपर है। और पर ब्रिज के नीचे एक हटमेंट बनाया गया था, मेट्रो रेल के जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे उनको रहने का जगह बनाया गया था, तो वो उसी के ऊपर, बिल्कुल उसी के ऊपर ये ब्रिज गिर पड़ी है। और उसमें कई लोग वहाँ पर सो रहे थे, जो नाइट शिफ्ट के लोग हैं और जो वहाँ खाना पकाने का काम करते हैं, ये सब लोग उस हटमेंट के अंदर थे। और उनके एक सहयोगी, एक दूसरे कर्मचारी हमको बता, राजेश मंडल, वो बोल रहे थे कि वो उनके जो सहकर्मी है, दोस्त है, वो नीचे दबे हुए हैं। और अभी NDRF, DMG और फायर ब्रिगेड, सारे पुलिस तो है ही है, ये सब लोग कंक्रीट कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रिज को काटा जा रहा है ऊपर से ताकि नीचे दबे हुए लोगों तक वो पहुंच सके। रेहान,
बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ, आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए, आपसे अगर जरूरत पड़ी तो फिर बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कर्नाटक के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BS येदियुरप्पा ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम उनके आशानुरूप नहीं आए हैं। पिछले सप्ताह हुए चुनाव में कांग्रेस ने जनता दल एस से गठबंधन न करने के बावजूद 37% सीटें जीती हैं। बीजेपी को शहरी क्षेत्र में मात्र 31% वोट मिले हैं। बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कोई भी चुनाव के परिणाम किसी भी पक्ष को धक्का दे सकते हैं। अगर मई के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने कांग्रेस को धक्का दिए तो शहरी स्थानीय निकायों में मतदाताओं ने बीजेपी को धक्का दिया है। बीजेपी को इससे ज्यादा धक्का लगा है क्योंकि नगरीय निकायों में माना जाता है कि उसका जबरदस्त समर्थन है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येडियुरप्पा ने कहा,
पक्ष आड़ पक्ष हणद बल और शक्ति जेडीएस कांग्रेस
कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर राज्य में सरकार चला रहे हैं तो वो राजनीतिक शक्ति और पैसों की शक्ति तो उपयोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी को ज्यादा सीटें जीतनी चाहिए थी लेकिन हमारी उम्मीद से कम सीटें जीते हैं। ये थे बीएस येडियुरप्पा के शब्द। कांग्रेस अपनी जीत से खुशी नहीं बल्कि थोड़ा आश्चर्यचकित भी है। आश्चर्य इसलिए है क्योंकि इस चुनाव में जेडीएस के साथ गठबंधन नहीं करने के बावजूद कांग्रेस को सफलता मिली है और अभी चुनाव के बाद गठबंधन करने से दोनों दल अधिकतर नगरीय निकायों में शासन करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस के कई नेता गठबंधन सरकार से खुश नहीं है तो इस नतीजे से अगले साल के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस जेडीएस को क्या सबक मिला है। हमने ये सवाल राजनीतिक विश्लेषक और जैन विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर संदीप शास्त्री से पूछा। उन्होंने कहा,
अगर बीजेपी अगले साल के लोकसभा चुनाव को देख रही है तो एक जो पार्टी में यूनिटी आना चाहिए उस यूनिटी के बगैर इस तरह के नतीजे को उनको झेलना पड़ेगा। दूसरी ओर आप कांग्रेस जेडीएस का देखिए तो इस यूएलबी इलेक्शन के पहले कांग्रेस जेडीएस दोनों ने कहा था कि हमारा पोस्टपोन अलायंस रहेगा, चुनाव में हम एक दूसरे के अगेंस्ट कैंडिडेट्स लगाएंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद अगर हमें साथ में आना पड़ेगा हम आने के लिए तैयार हैं। एंड काफी जगहों में देखिए उसकी अब जरूरत पड़ गई है दोनों को साथ आने की जरूरत। इसके जगह अगर आप प्री पोल इलेक्शन की अलायंस करते थे आपको उसका ज्यादा एडवांटेज मिल जाता। एंड लोकसभा के लिए एक ही उनके लिए इसमें लेसन है कि अगर आपको बीजेपी को चैलेंज करना है आपको दोनों को साथ में चुनाव के पहले ही आना पड़ेगा।
डॉक्टर शास्त्री का कहना है कि चुनाव से पहले गठबंधन करना कांग्रेस और जेडीएस के लिए अनिवार्य है, ये दोनों पक्षों के लिए अहमियत रखती है। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कांग्रेस और जेडीएस के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के उम्मीदवार के लिए जोश से काम करेंगे, इस सवाल का जवाब देना इस समय बहुत ही मुश्किल होगा। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
महाराष्ट्र में बीते दो दशकों में 60,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन क्या बढ़ते कर्ज की वजह से अपनी जान देने वाले इन किसानों की कहानियों में कभी आपने अपनी खेती बचाने की कोशिश करते करते खुदकुशी कर लेने वाली महिला किसानों के बारे में जाना है? कृषि संकट से जुड़ी जमीनी पड़तालों की इस विशेष सीरीज में बीबीसी किसानों की खुदकुशी और खेती से जुड़े मुद्दों के अनछुए पहलुओं को श्रोताओं के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में सुनिए विदर्भ के अमरावती और यमतवाल जिलों से बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे की ये दूसरी रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के विदर्भ में इस साल भी मॉनसून देर से आया है। मैं नागपुर से सड़क यात्रा करते हुए यहाँ अमरावती जिले में मौजूद शेंदुरजना बाजार गांव पहुँची हूँ। यहाँ हो रही बारिश भी जैसे विदर्भ के लोगों की सूखी जिंदगियों में खुशहाली की नमी नहीं ला पाई है। आज की इस यात्रा में हम मिलेंगे उन महिला किसानों के परिवारों से जिन्होंने खेती के दौरान जैसे अपने पसीने से अपनी जमीनों को सींचा और फिर भी जब कर्ज का बोझ कम ना हुआ तो अपनी जान देकर उसी जमीन में खुद को मिला लिया। शेंदुरजना बाजार गांव में रहने वाले भास्कर रसोड़े का परिवार अपनी दोनों किसान बेटियों को खो चुका है। 24 साल की माधुरी और 21 साल की स्वाति की मौत की वजह है खेती के लिए लिया गया कर्ज।
दीदी मक्के से करते थे, मक्के में वो क्या उसको 20,000-25,000 मक्का देना पड़ता था और इधर सब लागत लगाने पड़ती थी। एक दो साल अच्छा हो गया, फिर ये लड़की शादी आ गई तो दो साल में कोई फसल हुई नहीं। पहले कपास हुई थी, कपास नहीं हुआ। बाद में धूप काले में गले वो मूंगफली के लिए गया था 6 एकड़ खेत, उसमें 90,000 रुपये घाटा आ गया। तो 90,000 रुपये घाटा ऐसे घाटा कहाँ से कर गुरु, ये लड़के को सब मालूम था, ये जो बड़ी लड़की है ये लड़की नहीं ये लड़का है मेरे वाला। ये जो काम मैं खेती में करता था वो सब काम वो पूरे खेती में करती थी। कपास चुनना बोलो, फुहारी मारना है, नींदना है, कुछ भी कोई सा भी ऐसा काम छूटा नहीं उससे कि वो काम नहीं किया करती उसने। ये कर्जा फेरते 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 शादी रुक गई। शादी रुक गई तो उसने ऐसा तो महसूस नहीं होने दिया मेरे को, ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं ऐसी करने वाली हूँ करके। वो हिम्मत वाली थी तो इसने उसने पाया जान नहीं लिया। और सरकार अगर मदद करती थी तत्काल में तो ये दूसरी लड़की मेरी मरती नहीं थी, क्योंकि ये भी शादी के लिए ऐसा होगा। इसने भी बोला था मेरी शादी जल्दी कर दो कर दो करके, तो मेरे पास में पैसा ही नहीं था।
वहीं यवतमाल जिले के पीपरी बुट्टी गांव में 40 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मार्च 2015 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस गांव का दौरा कर वहां की स्थिति बदलने का वादा किया था, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। कुछ ही महीने बाद अवसाद के कगार पर खड़ी गांव की एक और किसान शांताबाई ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। शांता के बेटे मोहन को आज भी अपनी माँ की वो चप्पलें याद आती हैं जो उस कुएं के बाहर पड़ी मिली थी, जिसमें कूदकर शांताबाई ने खुदकुशी की।
2015 मध्ये देवेंद्र फडणवीस आले ते ते पुरे गाव फिरले, आमच्या गावाची पुरी हे पाहिली, त्यांनी परीक्षा ह्या गावाची दत्तक घेतलं म्हणून त्यांनी आवाहन केलं।
2015 में मुख्यमंत्री हमारे गांव आए थे। यहाँ के हालात देखने के बाद उन्होंने गांव को गोद लेने का आश्वासन भी दिया था। मेरा घर देखने के बाद बोले, अरे इसकी परिस्थिति बहुत खराब है, इसकी मदद करेंगे। लेकिन लौटने के बाद उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। मैंने उन तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली।
कभी राज्य में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक के जन्म स्थान के तौर पर पहचाने जाने वाले विदर्भ में आज हर तरफ उदासी छाई है। यवतमाल जिले के वागदा गांव की रेणुका ने भी अपनी जान ले ली। वह अपने घर में अकेली कमाने वाली महिला किसान थी। रेणुका के जाने के बाद से उनके बेटे अंकुश चौहान को अपना और अपने दो भाइयों का जीवन अंधेरे में डूबा हुआ सा लगता है।
हमारा घर मेरी माई चलाती थी, मेरे दादा और दादी दोनों अपंग है और सोसाइटी का कर्जा था, एक उत्कर्ष फाइनेंस और एक दूसरा दो फाइनेंस के कर्जा थे हमारे ऊपर। उसमें सोसाइटी का कर्जा माफ नहीं हुआ, उसका बहुत टेंशन मेरी माँ को आया। और दो जो उत्कर्ष और एक दिशा फाइनेंस के लोग रोज घर पे आते थे, माँ को पैसे के लिए सताते थे, रोज आके पैसा कब भरते ये वो, उसका माँ ने बहुत टेंशन लिया।
बीते दो दशकों से कृषि संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में यूं तो महिला किसानों की आत्महत्या से जुड़ा कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन खेतों से लेकर घरों तक उनकी खामोश चीखें बिखरी पड़ी हैं। महाराष्ट्र के अमरावती और यवतमाल जिले से प्रियंका दुबे, बीबीसी।
और अब नजर दौड़ाते हैं आज के खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं यूएस ओपन की तरफ, जहां पर दो बड़े झटके लगे हैं। आज हुए मुकाबले में स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रॉजर फेडरर को उलटफेर का शिकार होना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के जॉन मिलमैन ने रॉजर फेडरर को मात देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। रॉजर फेडरर के नाम पुरुष सिंगल्स में सबसे अधिक 20 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। तो वहीं विमेन सिंगल्स की अगर बात करें तो वहां पर मारिया शारापोवा को भी झटका लगा है और उन्हें स्पेन की खिलाड़ी कार्ला सुआरेज़ नवारो ने मात दी। और अब आपको लेकर चलते हैं दक्षिण कोरिया, जहां पर ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप खेली जा रही है, जिसमें भारतीय शूटर ओम प्रकाश मिथरवाल ने चांगवान में चल रहे ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय महिला शूटर अंजुम मोदगिल और अपूर्वी चंदेला ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में अच्छे प्रदर्शन के चलते 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में होने वाले ओलंपिक खेलों का टिकट हासिल कर लिया है।
और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार, अफगान तालिबान ने चरमपंथी गुट हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी की लंबी बीमारी के बाद मौत होने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक पुल के ढहने से इसके नीचे गाड़ियों में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब में ताज़ा हवाई हमलों की खबर है। दूसरे पक्ष के सूत्रों का कहना है कि ताज़ा हमले में रूस के लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए गए हैं, मगर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। म्यांमार में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जेल में डाले गए समाचार एजेंसी रॉयटर्स के दो पत्रकारों की पत्नियों ने कहा है कि उनके पतियों को फंसाया गया है और उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। लीबियाई प्रशासन का कहना है कि त्रिपोली में एक दूसरे के विरोधी मिलिशिया धड़ों में संघर्ष छिड़ जाने से 50 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।